आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। श्रीमद् भागवतम में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है परम भगवान के द्वारा, और चौथे स्कंद में हमें नारद मुनि जी की शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे शक्तवेश अवतार हैं, वो शिकारी के भी गुरु हैं और व्यास देव जी के भी। तो नारद मुनि जी ने प्रचेतस को शिक्षा दी है। प्रचेतस एक राजा के पुत्र थे जिन्होंने 10,000 सालों के लिए तपस्या उठाई, जिसके द्वारा परम भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और नारद मुनि जी ने उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। तो नारद मुनि जी कहते हैं चौथे स्कंद में, केम जन्म बे श्रिबेर बेहा शोक्र सवित्र यज्ञ के कर्मभेर भात्री प्रोक्ते पून सुफी विविधायुषा। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक मनुष्य के तीन प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है माता के गर्भ से, और इस जन्म को कहा जाता है शुक्र जन्म। सो पहला जन्म होता है माता के गर्भ से, और ये जन्म पशु भी स्वीकार करते हैं और मनुष्य योनि भी स्वीकार करते हैं। जो पशु हैं वो भी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, और आप और हम भी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो इस जन्म को कहा जाता है सवित्र जन्म, फिर शुक्र जन्म। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम किसी प्रमाणिक गुरु के द्वारा हरि नाम दीक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे आज के दीक्षा समारोह में आप सब हरि नाम दीक्षा स्वीकार कर रहे हो, तो इस दीक्षा को कहा जाता है सवित्र जन्म। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करते हैं, या हमें तो तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम ब्राह्मण दीक्षा स्वीकार करते हैं, या जब हमें गायत्री मंत्र प्राप्त होता है, और इस जन्म को कहा जाता है यज्ञ का जन्म। मेरे तरफ कूलर। तो तीसरे जन्म को कहा जाता है यज्ञ का जन्म। तो मनुष्य योनि के द्वारा ही हमें ये तीन जन्म प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। पशु जन्म में आप हरि नाम दीक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। पशु जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी कठिन है, पर कभी वैष्णव की असीम कृपा हो तो संभव हो पाती है। तो आज इस दीक्षा समारोह में हरि नाम दीक्षा भक्त ग्रहण कर रहे हैं, और हरि नाम दीक्षा इस कौन के कानूनों के अनुसार जब दी जाती है, जबकि किसी व्यक्ति ने कम से कम एक साल के लिए 16 माला का जाप किया हो। 16 माला का जाप क्यों? हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत जी वो तो अपने शिष्यों को 64 माला दिन में की जिम्मेदारी देते थे। भक्ति सिद्धांत जी ने लगभग 15,000-20,000 भक्तों को दीक्षा दी, पर सबको उन्होंने 64 माला दिन में करने की जिम्मेदारी दी थी। तो 64 माला जो व्यक्ति करता है दिन में वो लखपति कहलाता है। लखपति कहते हैं जो बहुत पैसे कमा रहा है, पर आध्यात्मिक जीवन में लखपति उसे कहते हैं जो कि 64 माला दिन में जाप करे। तो प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण भक्ति की स्थापना की पश्चिम देशों में, उन्होंने 64 माला को घटा दिया और हम भक्तों को 16 माला की जिम्मेदारी दी। और कभी कभी लोग कहते हैं अभी थोड़े और घटा देना चाहिए, तो हम कहते हैं अभी और आगे नहीं घटा सकते। करना था प्रभुपाद जी ने कर लिया, उसके बाहर अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। तो 16 माला का जाप हम क्यों करते हैं? 16 का माला का जाप करने के लिए हमें कम से कम 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे लगने चाहिए। और अगर हम 2 घंटे दिन में हरि नाम का जाप करेंगे तो फिर ये संभव है कि हम अपने अनर्थस को भी दूर कर सकेंगे और हम निश्चित होकर भगवान की सेवा में जुड़े रहेंगे। जो भक्त नियमित रूप से माला का जाप करते हैं, जो भक्त नियमित रूप से विधियों का पालन करते हैं, वो भक्त भक्ति के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ते हैं। और जो भक्त लापरवाही से जाप करते हैं, जो भक्त विधियों का पालन नहीं करते, वो भटकते रहते हैं आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में। एक दिन जीव मन कहता है भक्ति करो, दूसरे दिन मन कहता है बाहर जाओ। तो अगर हम सदा भगवान के चरण कमलों में रहना चाहते हैं तो जो महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है उसका हमें आवश्यक ही पालन करना चाहिए। 16 माला का जाप तो करें, पर चैतन्य चरितमृत नाम के ग्रंथ में कृष्णदास कविराज जी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु जी की लीलाओं और उपदेश का वर्णन है। महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान हैं और कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितमृत की रचना आरंभ की थी जब वो 90 साल से भी अधिक के थे। अंदाजा लगाओ इस उम्र में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना आरंभ की। तो चैतन्य चरितमृत में समझाया गया है कि हरि नाम का उच्चारण का लाभ तो हर परिस्थिति में हमें होगा, पर अगर हम ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। संतों ने कहा है कि हरि नाम के जाप के 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है नाम अपराध की। आप जाप करते हो और साथ में अपराध भी करते हो। दूसरी स्टेज है नामाभासा। आप जाप कर रहे हो और अपने आप को अपराधों से बचा रहे हो। और तीसरी स्टेज है शुद्ध नामा, कि आप जाप कर रहे हो और किसी प्रकार से अपराध नहीं कर रहे। तो हम सब भक्त, सब जो यहां उपस्थित हैं, चाहे कोई दीक्षा ले रहे हैं, कोई चाहे आप अतिथि के रूप में हर रविवार को आते हो, यह आवश्यक है कि जो भी लोग इस्कॉन के साथ जुड़े हैं उनकी हरि नाम में रुचि रहती है। हमारा अभ्यास है भारत में ही नहीं पर अमेरिका विदेशों में भी, इस ऐसे तो अनेक हिंदू मंदिर हैं हर शहर में, हर अनेक मंदिर हैं, पर इस्कॉन के मंदिर में अक्सर वही व्यक्ति जुड़ते हैं जिनकी भक्ति योग में रुचि है, जिनकी हरि नाम के उच्चारण में रुचि है, नहीं तो वो इस्कॉन के साथ नहीं जुड़ते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सबकी भक्ति योग में रुचि है और आप सबकी हरि नाम में श्रद्धा है। तो बिल्कुल आरंभ में हम हरि नाम का जाप करते हैं और अपराध भी करते हैं। कई बार लोग हरि नाम का जाप शुरू करते हैं, 1 नियम का पालन करते हैं, 2 का करते हैं, 3 का करते हैं और आस्ते आस्ते 4 का करते हैं। तो हरि नाम का जाप का लाभ हर परिस्थिति में है, पर अगर आप नामाभासा, अगर आप प्रयास कर रहे हो अपने आप को नाम अपराधों से बचाने के लिए, तो फिर इसका आपको ज्यादा लाभ पहुंचेगा। इस विषय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितमृत में, जहां कहा गया है भव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबू तन पाया कृष्ण पदे प्रेम धाना। आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50 जन्म हरि नाम का जाप करते जाओ, पर अगर आप अपने आप को नाम अपराध से नहीं बचाओगे तो आपको जो भगवत प्रेम जो कि हृदय में अनुकूल होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हरिनाम को जाप भी करना चाहिए और अपने आप को 10 नाम अपराधों से बचाना चाहिए। हम प्रयास करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही हमारा सहयोग देंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो प्रयास करता है मुझे समझने के लिए मैं उसको उसका सहयोग करता हूँ, जिसके द्वारा जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं और जो गुण हैं उन्हें वो बढ़ा पाता है। तो 10 नाम अपराध हैं वैष्णव आचार्यों के अनुसार। हमारे इस्कॉन के मंदिरों में अक्सर इन 10 नाम अपराधों का हम उच्चारण करते हैं रोज सुबह। पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। अगर आप लोग थोड़ा पीछे जगह नहीं है तो आप भक्त लोग आगे भी आ सकते हो बैठने के लिए, आगे थोड़ी काफी जगह है कि नहीं, आगे भी बुला सकते हो। तो पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। ये जो अपराध शब्द है, अपराध, उसका अर्थ है जिसके करने से आप राधा रानी जी से दूर हो जाते हो। और अपराध से बचना कठिन नहीं है। तो पहला नाम अपराध है वैष्णव निंदा या वैष्णव अपराध। चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे भक्ति के संबंध में, और भक्ति के संबंध में शिक्षा देते हुए महाप्रभु जी ने कहा कि भक्ति का जो बीज है, बगीचा है, भक्ति का जो बीज है ये उगता है हरे नाम के उच्चारण से, पर भक्ति का जो सुंदर बगीचा है वो नष्ट हो जाता है जबकि एक पागल हाथी उस बगीचे में आता है। इसी प्रकार इस वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति का जो लाभ है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे पहला अपराध कहा जाता है। और वैष्णव अपराध के द्वारा हरि नाम के सारे गुण उखाड़ दिए जाते हैं, इसलिए हमें इस अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव का सिद्धांत रहना चाहिए कि हम एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे के गुणों को देखें। अगर आप एक दूसरे के गुणों को देखोगे तो उसके द्वारा आपका आदर भी बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति। और अगर आप केवल नुक्सों को ढूंढेंगे, नुक्सों का चिंतन करेंगे, तो फिर इसके द्वारा अपराधी विचार हृदय में बढ़ेंगे। दूसरा नाम अपराध है देवताओं और देवियों को परम भगवान के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना। हमारे देश में हम सब पले हैं लगभग इस शिक्षा के साथ, सब भगवान एक हैं। सच है, सब भगवान एक हैं, जिसकी पूजा करनी है करो और सब पूजाओं का एक ही परिणाम है। शास्त्रों की दृष्टि से अगर देखोगे तो ये समझ में आता है कि एक सर्वश्रेष्ठ भगवान है, एक परम भगवान है और अनेक देवता और देवियां हैं। 33 करोड़ देवता और देवियां हैं, एक दो नहीं, 33 करोड़, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो अगर आप सब देवताओं की तस्वीर भी अपने घर में रखने जाओ तो शायद आपकी दीवारों में 33 करोड़ तस्वीरें नहीं लग पाएंगी। और ये 33 करोड़ देवता देवियां जो है ये सब अधीन है किसके? ये सब अधीन है परम भगवान श्री कृष्ण के। ये सब अपना आदेश प्राप्त करते हैं परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा। आज सुबह हम 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक पर प्रवचन दे रहे थे। जिसमें प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता की एक रचना एक श्लोक का उपयोग किया जिसमें कहा गया है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंद सर्व कारण कारण। अनेक ईश्वर है पर एक ही परमेश्वर है जो कि हर चीज का कारण है। तो ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी हर चीज के कारण है और देवता देवी जो हैं उनके अधीन हैं, ना ही उनसे स्वतंत्र हैं, ना ही उनके समान हैं। अब कई बार लोग पूछते हैं, अभी तक तो हम देवताओं की पूजा करते आए हैं, अब आप इस्कॉन वालों के साथ जुड़कर ये शिक्षा मिलती है कि कृष्ण भगवान परम भगवान है, कृष्णा भक्ति करेंगे तो देवता देवी तो गुस्से नहीं हो जाएंगे, हमारी जो संपत्ति है ये कहीं चले तो नहीं जाएगी, हमें कुछ श्राप तो नहीं लग जाएगा, शास्त्रों का निर्णय है नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि देवता देवी सब परम भगवान के अधीन है और जब वो देखते हैं परम भगवान की उपासना हो रही है तो इसे वो खुश होते हैं। श्रीमद् भागवतम में इंद्र जी शिव जी ब्रह्मा जी सब परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और सबके सब ये स्वीकार कर रहे हैं क्या कृष्णा थियो भगवान स्वयं। उदाहरण दिया गया है नारद मुनि जी के द्वारा, जिस प्रकार अगर आप अपने पेट में खाना डालो तो शरीर के अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डालो, बहुत बड़ा वृक्ष है उसमें लाखों पत्ते हैं, लाखों पत्तों को पानी पिलाने जाओ एहसान है नहीं, पर एक जड़ में पानी डालो तो सारे पत्तों तक ये ताकत पहुंच जाती है। तो हमें बिना किसी शंका के ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृष्णा भक्ति द्वारा जो हमारा आभार है 33 करोड़ देवता देवियों के प्रति सबको हम चुका रहे हैं। आप बिजली इस्तेमाल करते हो, बिजली का बिल भरना पड़ता है पूना में या मुफ्त में बिजली भरना पड़ता है? पानी इस्तेमाल करते हो भरना पड़ता है और क्या प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने 33 करोड़ देवताओं का कर्जा चुकाना है। सूर्य के देवता आपको सूर्य की रोशनी मिल रही है, आप 4 घंटे बिजली इस्तेमाल करते हो रात को और आपको इतना बड़ा बिजली का बिल आ जाता है हर महीने, है ना? आजकल सब लोग चिल्ला रहे हैं बिजली का बिल बहुत बढ़ते जा रहा है, अमेरिका में भी चिल्ला रहे हैं लोग क्योंकि अमेरिका में भी बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है। तो सूर्य आपको रोशनी देता है, कभी बिजली का बिल आता है आपको सूर्य का? हाँ आता है। चंद्रमा द्वारा भी रोशनी मिलती है, इंद्र द्वारा जल मिलता है, वायु के देवता द्वारा वायु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार 33 करोड़ देवता देवियों का आभार कर्जा हमने चुकाना है। तो आप कहां से चुकाओगे सबका? आप कृष्णा भक्ति करते हो तो सबका जो कर्जा है चुका देते हो। इसलिए कृष्णा भक्ति के द्वारा हम सारे जो हमारी जिम्मेदारियां हैं सबका पालन कर रहे हैं। तीसरा अपराध है गुरु के अवज्ञा, गुरु का आदेश नहीं मानना या गुरु को साधारण व्यक्ति के समान समझना। तो शास्त्र में जैसे मैंने कहा था आरंभ में प्रमाणिक गुरु की शरण लेना का वर्णन है, शास्त्र में कहा गया है कि हम जन्म लेते हैं अज्ञानता में और गुरु द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जैसे कि अंधेरेपन में आप एक दूसरे को देख नहीं सकते पर रोशनी में आप एक दूसरे को देख सकते हो। इसी प्रकार जब हम जन्म लिया था हम लोगों ने ना हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान था ना भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान आपने प्राप्त किया स्कूल में जाकर ABCD क ख ग सीखा और आध्यात्मिक ज्ञान हम सीखते हैं कैसे? भगवान के प्रतिनिधियों के पास जाकर। तो गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, इस्कॉन कॉलेज में, और गुरु में क्या गुण होने चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार पस्ता वेगम। गुरु का मन और इंद्रियों में पूरा वश होना चाहिए, तो ही वो अपने आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट कर पाएगा। शास्त्र में कहा गया है कि हमें आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट करना चाहिए। तो गुरु का फर्ज है कि वो इन गुणों को अनुकूल करें अपने व्यवहार में, और गुरु जो उपदेश भी देता है उसे होना चाहिए शास्त्र पर आधारित। गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीन मार्ग हैं। जैसे रेलवे रेलगाड़ी वो चलती है दो ट्रैक पर, है ना, चार पहिए दो ट्रैक पर चलते हैं। हमारी जो भक्ति है ये निर्भर है गुरु की शिक्षा, साधु की शिक्षा और क्या, शास्त्र की शिक्षा। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, जैसे ये शास्त्र है, ये तो खैर है भक्ति रसमृत सिंधु। प्रभुपाद जी ने कहा हर भक्त को ये ग्रंथ सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस ग्रंथ में अनेक नियम हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। मैं प्रभुपाद जी के साथ था लॉस एंजलिस में 1971 में, जबकि ये किताब छप कर आई थी और प्रभुपाद जी से रिलीज कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी अपने व्यासस्थल में बैठे थे और वो ये किताब को उठाकर कहा दिस नेक्टर ऑफ डिवोशन इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, एवरी डिवोटी मस्ट स्टडी इट। तो शास्त्र में है नियम, जैसे भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी हमें शिक्षा दे रहे हैं नियमों के बारे में। तो शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्मांधि साक्षात भगवत पंडिताम। फिर है साधु। साधु किसे कहते हैं? साधु की पहचान उसके वस्त्रों द्वारा नहीं, साधु की पहचान है उसके आचरण के द्वारा, उनका आचरण शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव जी ने कहा तितिक्षा करु निकहा सूरद सर्वा धैनम अजत सत्व संत साधु साधु भूषणा। ये है साधुओं के लक्षण। तो साधु उसे कहते हैं प्रामाणिक आचार्य भक्त जिन्होंने शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन किया हो। फिर गुरु, गुरु का क्या कर्तव्य है? जो शिक्षा साधु ने दी, जो शिक्षा शास्त्र ने दी, उसको समझकर संक्षेप रूप में सरल रूप में शिष्य समाज की भलाई के लिए प्रस्तुत करना। पर गुरु को यह अधिकार नहीं कि वो कहे हाँ ये शास्त्र का आज के आधुनिक युग में प्रभाव नहीं, हम तुम्हें अपना शास्त्र देते हैं। जैसे आज आप देखते हो अनेक प्रचारकों ने अपने शास्त्र पैदा कर दिए। कुछ दो चार पांच महीने पहले हम दिल्ली में गए थे एक बड़े प्रसिद्ध प्रचारक के आश्रम में, तो हम उनके आश्रम में गए थे। हमने एक नया आश्रम खरीदा है दिल्ली में, तो उसके पास में उनका आश्रम था, तो हम भक्त ले गए देखने को दिखाने को। तो उस आश्रम में जब हम पहुंचे हमने कहा आप कौन सी किताबें बेचते हो यहाँ, क्योंकि हम लोग भी किताबें बेचते हैं। तो हमने देख पूछा, जिज्ञासा थी, देखिए वो क्या बेचते हैं। उन्होंने कहा हमारे गुरु की भगवद गीता है हमारे पास, और गुरु का नाम की रामायण है, गुरु के नाम की महाभारत है। तो हमने सोचा कि शायद गुरु ने अनुवाद किया हो या तात्पर्य लिखा हो। कहा नहीं, वो गुरु की गीता में गुरु का उपदेश है गीता के नाम पर, भगवान कृष्ण के श्लोकों का स्थान ही नहीं रामायण में, ना वाल्मीकि की रामायण ना तुलसीदास की। अपने गुरु ने शिक्षा दी है जिसे वो कहते हैं गुरु की रामायण है। तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि जो प्रमाणिक शास्त्रों की का ज्ञान है उसको अनुकूल करे, उस पर आधारित प्रचार करे। जैसे कि प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति की स्थापना की, और बड़े कठिन परिस्थितियों में जहां प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में अमेरिका पहुंचे थे, किसी ने वहां कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, पर प्रभुपाद जी ने इन कठिन परिस्थितियों में भी शुद्ध वैदिक संस्कृति की स्थापना की। हालांकि उन्हें कहा गया था, स्वामी जी कोई अमेरिका में आपको नहीं सुनेगा, और जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे भी तो वहां जो उपस्थित ढोंगी स्वामी थे उन्होंने कहा, स्वामी जी कोई आपका कहना नहीं मानेगा, हमारे जैसे चलो। उनके जैसे चलने का क्या मतलब? धोती कुर्ता की वजह पतलून कमीज पहनो, हाथ से खाने की वजह कांटा छुरी से काटो, अंग्रेज बन जाओ। तो प्रभुपाद जी ने जब भी शुद्ध संस्कृति का प्रचार किया और लोगों को आकर्षित किया, क्योंकि बल है, शक्ति आती है कहां से? पवित्रता के आधार पर। तो गुरु का फर्ज है जो साधु महात्मा हैं उनके आदेश के अनुसार प्रचार करे, जो शास्त्रों की शिक्षा है उसके आधार पर प्रचार करे। और गुरु की क्या इच्छा रहती है? ये इच्छा रहती है कि हर शिष्य भक्त भगवान के शरण लगत हो जाए, चाहे कोई भी भक्त आपका गुरु हो। हर गुरु की एक ही इच्छा है कि आप इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम लौट सको, और आप में भक्ति भावना बढ़े और भौतिक आकर्षण घटे। दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। कई बार लोग कहते हैं हम दोनों चीजों को बढ़ा सकते हैं, भक्ति का आकर्षण और माया का आकर्षण। कई बार लोग पूछते हम दोनों को बढ़ाएं स्वामी जी, माया भी बड़ी मीठी है भक्ति भी मीठी है। तो हम कहते हैं भक्ति चाहिए तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा, भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं शास्त्रों में, पर वो त्यागने की शक्ति आती है परम भगवान के द्वारा। तो हमें गुरु की इच्छा रहती है कि शिष्य भगवान के शरणागत हो। शरणागत होने का लक्षण है कि हम हरि नाम में रुचि ले रहे हैं, हरि नाम के प्रति हमारा आकर्षण है, शास्त्रों के प्रति हमारा आकर्षण है, शास्त्रों के अध्ययन में हमारी रुचि है, और भक्तों की संगत प्राप्त करने में रुचि है, मंदिर भक्तों के साथ सेवा करने में रुचि है, भगवान के प्रचार करने में रुचि है। भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मैं उपदेश आगे पहुंचाता है। तो गुरु की यही इच्छा रहती है, और गुरु के सामने शिष्य को क्या सोचना चाहिए कि वो मूर्ख है। इसमें हमारे पास भगवान कृष्ण का उदाहरण है और चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जी छोटी सी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे, और एक समय वो वाराणसी में थे, हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ दिन रात। तो वहां उस समय वाराणसी आज भी उस समय भी मायावादियों का अड्डा था। तो मायावादियों ने कहा क्या कर रहे हो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो संस्कृत के विद्वान हो, तुम्हें तो वेदांत तो पढ़ना चाहिए, क्या या हरि नाम का प्रचार कर रहे हो, हरि नाम का उच्चारण कर रहे हो। महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु ने देखा कि मेरे में खास योग्यता नहीं है। जैसे कहा गया है शास्त्र में कलयुग में लोगों के खास गुण नहीं है, कम बुद्धि के हैं। तो गुरु ने कहा इस युग में क्या करो, हरि नाम का जाप करो। ये था महाप्रभु जी का उदाहरण। कृष्ण बालराम ने अपने गुरु संदीपनि मुनि से कहा हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं, आपने हमें शिक्षा दी है, ज्ञान दिए, आंखों को खोला है। संदीपनि मुनि को पता था ये दो शिष्य साधारण शिष्य नहीं है। उन्होंने कहा मेरे जो बेटे मर गए हैं उनको जाकर लाओ, भगवान के लिए तो कुछ भी संभव था। तो सेवा भावना होनी चाहिए, और अगर ये सेवा भावना हो तो फिर गुरु की कृपा से आप दृढ़ होकर भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। हमें यही नहीं सोचना चाहिए गुरु के पास जाएंगे गुरु हमारी तारीफ करेगा, और गुरु तारीफ नहीं करे तो मतलब कि गुरु हमारी श्रद्धा को समझ नहीं पा रहा। नहीं तो कई भक्तों की इच्छा होती है कि गुरु उनकी प्रशंसा करे। तो ये उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अगर हमारी कमियां हैं तो वो बताई जाए, और शिक्षा निम्रता से ग्रहण करके हम भक्ति में आगे बढ़े, तो गुरु अवज्ञा से बचना चाहिए। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों की निंदा करना या खंडन करना। ये हिंदुस्तान में फैशन बन गया, फैशन बन गया। आप समझते क्या मतलब, ये साधारण बोली है, मतलब कि आजकल ये रिवाज बन गया है, खास करके जो हमारे मॉडर्न हिंदू हैं वैदिक शास्त्र में विश्वास नहीं करते है कि नहीं, कहते हैं ये भी भगवत गीता महाभारत रामायण ओ दिस इज ऑल माइथोलॉजी, कहते हैं ये तो कल्पना है किसी की, इसमें कोई प्रमाणिक प्रमाणिकता नहीं है। कई लोग वैदिक शास्त्रों का खंडन करते हैं ना, आप कहोगे आप तो विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आप सब भक्त हो, तो आप भक्त की दृष्टि से देखते हो, पर समाज में अनेक अभक्त भी हैं। तो किसी प्रकार से ये सोचना कि वैदिक शास्त्रों का स्थान नहीं या इस आधुनिक युग में वैदिक साहित्य का कोई स्थान नहीं, ये एक महान अपराध है। वैदिक शास्त्रों की शिक्षा है, उसे हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। सनातन का मतलब क्या, जिसकी ना कभी शुरुआत हुई थी ना ही जिसकी कभी समाप्ति होगी। तो ये है सनातन धर्म जिसके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज भी हम भगवद गीता पढ़ते हैं, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जी पढ़ रहे थे और 5000 साल पूर्व भगवान ने ये उपदेश दिया अर्जुन को। तो ये भगवत शास्त्रों का उपदेश है, ये सनातन उपदेश है, और वैदिक शास्त्रों का निर्णय क्या है कि हम सबका कर्तव्य है कि हम परम भगवान की सेवा में जुड़े रहें। आगे अगला नाम अपराध है कि हरि नाम की महिमा को किसकी कल्पना समझना। तो वैदिक शास्त्र में कहा गया है हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, आगे क्या खलो तो कहा गया है हरि नाम या हरि नाम यही एक माध्यम है क्या करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। कई बार लोग सोचते हैं 16 माला करेंगे पर चूड़ी छोड़ी थोड़े और मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा समय तो 16 माला को बढ़ा दो। 16 माला मिनिमम कोटा है, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो आप 64 माला भी कर सकते हो। कई हमारे कई भक्त हैं जो 64 माला रोज करते हैं, कहते हैं 16 माला बहुत कम है। तो हरि नाम ही एक माध्यम है भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे कि जब शुक्रदेव गोस्वामी से पूछा गया परीक्षित महाराज के द्वारा, ये बताइए कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा खले दो से राजन, कलयुग में दोष ही दोष है कि नहीं, आप सड़क में चलोगे आपको गंदी तस्वीरें देखेंगी, आप रेडियो सुनोगे तो गंदे गाने सुनने में लगा, सिनेमा देखोगे टेलीविजन देखोगे तो गंदी गंदी एडवर्टाइजमेंट आएगी, जहां देखो दोष ही दोष है ना, सड़क में चलो वहीं आपको गंदे गंदे दोष दिख जाते हैं भारत में। तो जहां देखो दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में, क्या है वो, क्या है, कृष्णा का कीर्तन। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतयो यजथो मुखे द्वापर परिचय आरम्भ कलयुग धारी कीर्तन। इस कलयुग में कृष्णा के कीर्तन द्वारा वही लाभ प्राप्त हो सकता है जो कि 1,00,000 साल 60,000 साल चिंतन द्वारा प्राप्त होता था सत्ययुग में। तो ये सोचना कि हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं है, या ये सोचना कि हरि नाम के अलावा हमें दूसरे मंत्रों की आवश्यकता है, ये गलत है, ये गलत विचार है। तो हरि नाम जो है, हरि नाम एक काफी है कि हमें भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ाने के लिए, और हरि नाम के उच्चारण के द्वारा ही हम परम भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो हमें किसी प्रकार से ये नहीं सोचना चाहिए कि यह हरि नाम की जो महिमा है ये किसी की कल्पना है। जब अंग्रेजों का राज्य आया ना भारत में, तो अंग्रेज लोगों ने अपने बड़े बड़े राइटर्स को संस्कृत के पंडित बनवाए। जब ये बड़े बड़े संस्कृत के पंडित बने, तो बड़े बड़े ब्रिटिश राइटर्स ने लेख लिखना, पुस्तक लिखना शुरू कर दिया। और उसमें क्या स्थापित कर रहे थे कि वैदिक साहित्य की जो महिमा है ये कल्पना है, ये जो महामंत्रों की कल्पना की महिमा है वो कल्पना है, पर ये कल्पना नहीं। और हरि नाम का जो मीठापन है, अगर आप इसे महसूस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद अनुभव करना पड़ेगा। अगर आप चखना चाहते हो हरि नाम का मीठापन तो आपके हरि नाम का टेस्ट लेना पड़ेगा। हम आपको दूर से दिखा देंगे अच्छे समोसा कचौड़ी पकौड़े, पूछे आपसे कैसे हो, कैसे लगता है, आप कहोगे स्वामी जी हम चखेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे, चखोगे तो ही बताओगे। शहद का मीठापन चखने के बाद ही अनुभव होता है। तो इसी प्रकार हरि नाम का जो मीठापन है वो अनुभव होता है कब, हरि नाम के उच्चारण के पश्चात। तो हरि नाम की महिमा को कल्पना नहीं समझना चाहिए, ना ही हमें हरि नाम के शब्दों को अपना मनमानी भाव देना चाहिए। जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हरि नाम के उच्चारण द्वारा हम श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भक्ति दो भक्ति दो भक्ति दो। ये नहीं क्या क्या कहें नहीं नहीं, इसके द्वारा कोई और अर्थ है। सातवां नाम अपराध है हरे नाम के जैप के बल के पर पाप करना। ये सोचना कि अब तो मैं हरि नाम कर रहा हूं, ये सोचना कि मैं तो अभी दीक्षित हो गया हूं, आज क्या तारीख है, आज 25 तारीख को, तो सारे मैंने पाप गुरु के अकाउंट में डाल दिए यज्ञ में, अभी अभी मैं तो मुक्त हो गया, अच्छा क्या चापलूसी करके दीक्षा ले ली, अब तो मैं मुक्त हो गया, अब मैं नया पाप कर सकता हूं थोड़े समय के लिए। या ये सोचना कि हम इतने सालों से जप करते आ रहे हैं तो पाप तो मिट गए होंगे, नहीं तो अभी अधिक कुंभ हो रहा है उज्जैन में, वहां जाएंगे पाप को धोके आ जाएंगे, फिर हमें अधिकार होगा नया पाप करने का, ये एक महान अपराध है। हरे नाम के जप के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। भक्त जो है भगवान से कुछ उम्मीद नहीं रखता, केवल भगवान से भक्ति की भीख मांगता है। कल रात को हमने आपको माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई थी, शायद आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब माधवेंद्रपुरी को पता लगा कि ये भगवान ही आए थे ग्वाले के रूप में उन्हें दूध देने के लिए, तो क्या उनके हृदय में दुख पहुंचा, मैंने भगवान से सेवा ले ली। एक समय जब रूप और सनातन गोस्वामी ब्रज में थे तो एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की आई, मीठी चीनी दूध इत्यादि लेकर। रूप गोस्वामी जी घर में थे अकेले, घर कहां था उनका, कोठी थी नहीं, एक पेड़ के नीचे घर बनाया हुआ था। जब ये वो स्वामियों के घर की हम चर्चा करते हैं तो आपकी कोठी जैसे नहीं, गुड़गांव पार्क में जैसे कोठियां हैं, तो मतलब कि किसी वृक्ष के नीचे। तो ये बड़ी सुंदर लड़की आई और रूप गोस्वामी जी को चीनी दूध इत्यादि दे गई और कई और वस्तुओं। और फिर रूप गोस्वामी और सनातन के भाई प्रचार करने तो जाते थे सारा दिन, पर खाते थे एक साथ। और क्या खाते थे, अक्सर मधुकरी, मधुकरी करते थे। मधुकरी मतलब जैसे मधुमक्खी थोड़ा सा ही शहद उठाती है, भीख मांगकर उतना ही लेते थे जितना की आवश्यक हो। पर सनातन गोस्वामी जब घर लौटे दोपहर के भोजन के लिए, सूखी रोटी और नमक की बजाय क्या देखा उन्होंने, खीर रबड़ी रसगुल्ला वगैरह। तो उन्होंने पूछा ये सब कैसे संभव हो पाया रूपा, कहां से ये धन आ गया। हालांकि एक समय इनके पास इतना धन था कि रूपा गोस्वामी जी ने जब अपनी सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास एक पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। अंदाजा लगाओ, सोने के सिक्कों के साथ पूरी नाव। पर उन्होंने बांट दिया, 50% ब्राह्मणों को बांटा, 25% रखा आवश्यकताओं के लिए भविष्य की, और 25% उन्होंने बांट दिया रिश्तेदारों को। और सब कुछ बांटकर जो करोड़पति अरबपति थे फिर से भिखारी बन गए। देखो ये है भक्ति। तो रूप गोस्वामी और सनातन दोनों ने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी थी और बड़ा साधारण जीवन बिता रहे थे ब्रज में। तो जब सनातन गोस्वामी आए भोजन खाने उन्होंने देखा कि सूखी चपाती और नमक के बजाय ये सब हलवा वगैरह है, तो उन्होंने पूछा, अरे भाई किसने ये सब दिया तुम्हें आज? तो उन्होंने कहा, एक बहुत सुंदर लड़की आई थी जो तेजी के साथ ये देखकर भाग गई, कहा मैं बाद में आऊंगी। तो भाई ने कहा, रूपा वो जवान लड़की राधा रानी थी और तुम्हें धोखा देकर तुम्हें ये सब दे गई। उन्हें कहा कि हमें भगवान से लेना नहीं पर भगवान को देना है। तो ये होना चाहिए हमारा भाव कि हम हरि नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहते। तो हमें हरि नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दीक्षित हैं, ब्राह्मण हैं इत्यादि, तो हमारे पाप मिट गए हैं, अब हमें नया पाप करने का अधिकार है। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि हरि नाम है ये किसी प्रकार का कर्मकर्ण कार्य है। कर्मकर्ण कार्य उसे कहते हैं जो कि एक प्रकार का सौदा हो भगवान के साथ। आजकल तो कहते हैं सौदे की दुनिया है ना, सभी सौदा करते हैं। नहीं, हम आपके लिए ये करेंगे आप ये करोगे? छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं मम्मी डैडी के साथ, नहीं कहते हैं आप इतना पॉकेट मनी दोगे तो हम ये काम करेंगे। सच बात है, am I right? इतना नहीं दोगे तो पॉकेट मनी दो तो करेंगे। सच बात है, फिर मम्मी डैडी कहते अच्छा ज्यादा पढ़ाई करो तो और पॉकेट मनी मिलेगा। तो आज के जमाने में सभी सौदा करते हैं। आप कोई माल बेचते हो, कहोगे इतना दाम दोगे तो माल बेचेंगे। नौकरी करते हो, इतनी तनख्वाह दोगे तो हम तुम्हारी नौकरी करेंगे। तो कई बार तो हम भगवान देवताओं की पूजा भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, तपस्या करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कर्म कर्ण कराते हैं, ये सोचकर कि इसके बदले में हमें कोई भौतिक सुख प्राप्त हो। पर ये जो हरि नाम है ये कर्म कर्ण कार्य नहीं, ये हरि नाम जो है ये परम भगवान के प्रति हमारी प्रार्थना है। क्या? जिसका अर्थ है हमें कृपा करके आप सेवा का अवसर प्रदान कीजिएगा। हमारी यही इच्छा है कि हम आपके चरण कमलों में रहें सदा। तो ये है भक्त की। तो हरि नाम जो है इसके द्वारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। आगे महाप्रभु जी नाम अपराध में कहा गया है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना ये भी अपराध बन जाता है। एक रूप से हमारे सामने चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है। क्या वो आदेश? जाए दाखो ताए कहो, जैसे भी तुम मिलो क्या कहो? कृष्ण का उपदेश। वो कृष्ण का उपदेश क्या है? सर्वधर्मापवित्रा जा माम एकम क्षण मजा, हम तम सर्व पापी मोक्ष शमी समाचार। भगवान ने ये उपदेश दिया है पूरे मानव समाज के लिए, सिर्फ हिंदू लोगों के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के। तो ये आदेश है चैतन्य महाप्रभु जी का। पर साथ में ये भी कहा गया है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का प्रचार नहीं करो। तो उत्तर यह है कि हरि नाम के विषय में ये तो आप हर व्यक्ति को बोल सकते हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पर हरि नाम की जो महिमा है वो उपदेश आप दीजिएगा जबकि दूसरे व्यक्ति में भी थोड़ी श्रद्धा हो हरि नाम के प्रति। जैसे आपसे कोई भी पूछे कहा है तुम चाहे नाम, आप बता दोगे है कि नहीं? कोई पूछे कूटे है तुम चाहे पैसा सोना कूटे है, आप बताओगे? वो नहीं बताओगे, वो बताओगे जब थोड़ा दोस्ती हो जाएगा तो, है ना? तो हरि नाम हरे कृष्ण का जाप कीजिए, सबको बता सकते हो। पर हरि नाम की जो महिमा है वह बताइए जबकि दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा हो हरि नाम। फिर दसवां नाम अपराध है कि हरि नाम में पूरा विश्वास नहीं रखना या हरि नाम को जाप करते हुए भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हाँ, हम भक्ति में क्यों आते हैं? जैसे आप सब जो दीक्षा ले रहे हो, दीक्षा से पहले आप सबको समझाया गया है चार नियम क्या है, दस नाम अपराध क्या है, सब कुछ क्या जिम्मेदारी है। और आप सब दीक्षा ले रहे हो इसलिए कि आप जानते हो दीक्षा के द्वारा अगर आप नियमित रूप से जाप इत्यादि करोगे तो आप अपने भौतिक आकर्षण को घटा क्या उखाड़ सकोगे, ये आवश्यक है। पर अगर हम दीक्षा लेने के पश्चात भी भौतिक आकर्षण को घटाने का प्रयास नहीं करें तो ये एक प्रकार से अपराध बन जाता है। जैसे कि बीमारी दूर होती है दवाई से, इसी प्रकार ये भक्ति की दवाई से भौतिक आकर्षण जो है हमारा घटता है, कमजोर होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति जिसे कहा जाता है। तो हमें भौतिक आकर्षण से डरना है। जैसे कि मान लो आज आपका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है पर कल आपको हृदय में थोड़ी दर्द शुरू हो जाए, ब्रेन में दर्द शुरू हो जाए, कोई नाजुक पोर्शन में बीमारी आ जाए तो आप घबरा नहीं जाते? हाँ सच बोलो, आपको डॉक्टर बोलते आपको कैंसर होने की संभावना है, डॉक्टर कहे आपको कोई गहरी बीमारी होने की संभावना है तो आप डर जाते हो ना? तो उसी प्रकार हमें डर जाना चाहिए जब हमारा भौतिक आकर्षण बढ़ रहा है। जब आप देख रहे हो अरे भाई हम भक्ति में हैं और मन कहता है क्रिकेट मैच देखो, सिनेमा देखो, ये करो वो करो, तो उसे हमें डर जाना चाहिए। तो और पूरा प्रयास करना चाहिए इसे उखाड़ने के लिए। इसके अलावा एक और अपराध है, सावधानी से जप नहीं करना। मैंने लेक्चर के आरंभ में कहा था कि हरि नाम का जप तीन परिस्थितियों में हो सकता है। और सावधानी से जप नहीं करने का क्या मतलब? कितना कोटा है आपका रोज माला करने का? 64 नहीं, अच्छा 16। ओके, तो 16 माला का कोटा है रोज करने का। आप 16 माला कर रहे हो तो सारे दिन में करते हो, एक माला कर लिया सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को, फिर बाकी माला कर रहे हो आधी नींद में सोने से पहले, फिर माला का जाप कर रहे हो और साथ में 10 और काम भी कर रहे हो, टेलीफोन में भी बात कर रहे हो, अखबार भी पढ़ रहे हो, किसी और से गपशप भी कर रहे हो। नहीं, जब आप जप करने बैठते हो तो आपको सावधान रहना चाहिए, हर शब्द का उच्चारण बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और जितने ध्यान से सुनोगे उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जैसे आप अभी प्रसाद खाओगे, आज तो आप लोग सुबह से व्रत रख रहे हो ना, तो थोड़ी भूख होगी शायद। तो जब भूख हो रहा प्रसाद खा रहे हो और बार बार कोई बीच में कोई प्रश्न पूछने आए तो आपको अच्छा लगता है? आप क्या कहते हो? बाद में आना है कि नहीं? अभी हमको प्रसाद खाने दो शांति से। हमारे एक भक्त थे शुरू शुरू में, ब्रह्मानंद जी, वो अभी वृंदावन में निवास करते हैं। तो वो पहले उनका हमें इस्कॉन में बहुत बड़ी बहुत जिम्मेदारियां थी, हम सब उनसे आदेश लेते थे शुरू शुरू में। तो वो जब प्रसाद खाने बैठते थे तो अपना दरवाजा बंद करके बाहर निशाना एक लगा देते थे, आई एम इन समाधि नाउ, अभी मैं समाधि में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो उसी प्रकार का हमारा विचार रहना चाहिए जब हम जप करने बैठे। आपको कहना चाहिए अब हम समाधि में हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मतलब कि अब जप कर रहे हो, जो मंदिर में ब्रह्मचारी रहते हैं उन्हें मंदिर में बैठकर जप करना चाहिए, उनका सौभाग्य है कि ये सुविधा है। पर आप सब जो घरों में रहते हो ये वातावरण शायद नहीं हो, तो पर जब भी आपको प्रयास करना चाहिए जाप के लिए, अब डेढ़ दो घंटा दिन में निकालो और बड़े सावधानी से जाप कीजिएगा। वैसे तो आप जाप दफ्तर जाते हुए भी कर सकते हो, मोटर चलाते भी कर सकते हो, स्कूटर चलाते भी कर सकते हो, पर इसको 16 माला के कोटे में मत गिरना, ये सब जो है एक्स्ट्रा माला। 16 माला के कोटे में गिनो, जो 16 माला सावधानी समाधि के रूप में करो। तो इस प्रकार से अगर आप भक्ति करोगे तो इसका क्या परिणाम होगा? भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। तो आप सब जो आज दीक्षा ले रहे हो, कृपा करके हरि नाम के महत्व को सदा याद करते रहना, साथ में प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी पढ़ो। आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ हिंदी में भी हैं, मराठी में भी हैं। मराठी में श्रीमद् भागवतम पूरा 12 स्कंध और 6 महीने में समाप्त हो जाएगा, पूरा 12 स्कंध। तो अभी इंग्लिश अगर नहीं पढ़ सकते कुछ परवाह नहीं, हिंदी में पढ़ो। हिंदी भी नहीं तो मराठी में आपको ग्रंथ दे देंगे। मराठी में अभी काफी ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं और 6 महीने पूरा 12 स्कंध हो जाएगा। तो किताबों को पढ़ो रोज. अगर आप अनपढ़ हो, नहीं पढ़ सकते, शायद एक दो हो, तो फिर आप किसी और को बोलो, आप पढ़ो, हम सुनते हैं. पर किताबों से अपना आकर्षण बढ़ाओ. साथ में चार नियम है. क्या है चार नियम? कोई मांस अंडा मच्छी नहीं खाना. खैर ये तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है शायद. ये छोड़ना सबसे आसान रहता है. फिर प्याज लहसुन में नहीं. क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन इत्यादि से तामसिक भाव बढ़ता है. तामसिक भाव से तामसिक विचार बढ़ते हैं. तामसिक विचार बढ़ेंगे तो तामसिक कार्य में भी आप जुड़ोगे. इसलिए नशे की चीज भी नहीं, नशे की चीज की आवश्यकता नहीं. अगर आपको एक नशा चाहिए तो क्या नशा अनुकूल करो? हरि नाम के प्रति आकर्षण. वो दूसरा नशा छोड़ दो. फिर जो खाओ प्रसाद खाओ, जो आप खाते हो उसको भगवान के चरणों में भोग लगाओ. भगवान गीता में कहते हैं जो कि मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहे हैं? पाप. तो पाप खाओगे तो फंसे रहोगे जन्म मृत्यु के बंधन में. कृष्ण प्रसाद खाओगे तो आस्ते आस्ते मुक्ति के प्रति आगे बढ़ोगे. तो हमारा ये सिद्धांत है, खाओ कृष्ण प्रसाद खाओ. और जो गृहस्थ है उन्हें गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार. और अगर आप शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार बिताओगे तो फिर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप आगे बढ़ सकोगे. अगर आप शास्त्रों की शिक्षा के विपरीत जीवन बिताओगे तो फिर फंसे रहोगे भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु के बंधन में. और जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो केवल हमें कष्ट पहुंचाता है. और साथ में जो भक्त दीक्षा ले रहे हैं, ले चुके हैं, लेने की इच्छा रखते हैं, उन्हें घर में एक छोटा सा मंदिर भी बना लेना चाहिए, ऑल्टर बना लेना चाहिए. हो सके तो गोणिताएं रखो या तस्वीरें रखो. मंगल आरती करो, समसरा दावा, फिर नरसिंह देव जी की आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा. अगर आप लंबा कार्यक्रम नहीं कर सकते मंदिरों जैसे तो छोटा कार्यक्रम रखो. पर इन सब ये जो प्रार्थनाएं हैं इनका उच्चारण करना चाहिए. इस प्रकार हम भक्ति में बढ़ेंगे. और हो सके जितना हो सके प्रचार के कार्य में जुड़ो. आपके पूना शहर में कोने कोने में नामाहत का प्रचार हो रहा है. ये नामाहत का प्रचार की शिक्षा ठाकुर भक्ति विनोद जी ने दी थी. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोने कोने में बीड़ी सिगरेट की दुकान है, उसी प्रकार कोने कोने में एक स्थान होना चाहिए जहां से भगवान का संदेश और हरि नाम का वितरण हो. तो कोने कोने में तो मंदिर खोलना संभव है, पर तो कोने कोने में आज इस्कॉन के भक्तों के द्वारा नामाहत का प्रोग्राम किया जाता है. तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब किसी न किसी नामाहत से जुड़े हुए हो, है कि नहीं? तो जान जुड़े हो उन प्रोग्राम में जाते रहो और सहयोग दो और लोगों को आकर्षित करने के लिए. इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन को ले जाओ एक घर से दूसरे घर तक. तो कृपा करके भक्ति की विधियों का पालन कीजिएगा और इस प्रकार अपने जीवन को सुखी बनाइए. और आप सब जो कि इस सभा में उपस्थित हो, आप सब से निवेदन है कि आप सब हरि नाम का जाप कीजिए. क्योंकि आज इस समय हमारा संडे का प्रोग्राम हो रहा है. प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण भक्ति की स्थापना की तो उन्होंने ये संडे कार्यक्रम की स्थापना की, जिसके द्वारा आप जैसे भक्तजन जो कि नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, उन्हें इतवार का दिन मिलता है मंदिर जाकर भगवान की आरती में उपस्थित होना, संतों की संगत का लाभ उठाना, भगवान का उद्देश्य सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना. इन कार्यक्रमों के द्वारा आपकी भक्ति बढ़ती है. तो हम शुरू करते हैं एक माला से, फिर जाप करते करते आगे बढ़ते हैं. तो आप सबसे निवेदन है कृपा करके कृष्ण भक्ति को लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए. यही एक साधन है असली सुख शांति सुरक्षा का. और ये साधन आपको प्राप्त हो रहा है बिना किसी कीमत के. केवल एक कीमत है, समय. समय थोड़ा दो और अगर हम कुछ त्यागे भगवत प्राप्ति के लिए तो इसका लाभ हमें ही पहुंचेगा. तो कृपा करके कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिए. कदम कदम पर खतरा है, कुछ पता नहीं अंत कब आएगा. तो भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो कि हर क्षण का उपयोग करता है भगवत प्राप्ति के लिए. कृपा करके इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए. हरे कृष्ण.